السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے اپنا ٹاپک جو ختم کیا تھا وہ تھا حروف الشجریہ. کون کون سے لیٹرز ہوتے ہیں حروف الشجریہ میں؟ شین یا اینڈ جیم. اور کیا یہ تینوں ایک ہی مخرج شیئر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک ہی مخرج سے تینوں لیٹرز آتے ہیں. کون سا والا لیٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ جی ان کے اندر جو آسان ہے یا، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوول شیپ ایک ڈرا کیجئے. اگر آپ ڈرا کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی چیز کو سمجھنے میں. اوول شیپ کو ہم کیا کہیں گے؟ دیٹس اے ٹنگ. ٹھیک ہے، اس کے دو حصے ہو گئے، ایک بالکل فرنٹ والا اور ایک لاسٹ پارٹ. ٹھیک ہے، لاسٹ پارٹ جو ہے وہ حلق کی طرف ہے. پھر ہم نے اس کے تھری ایکول پارٹس کیے ہاریزونٹل. سب سے لاسٹ ایریا ہم نے کہہ دیا کہ یہ اقصر لسان ہے، اور اقصر لسان میں ہم نے دو لیٹرز ڈسکس آلریڈی کر لیے، قاف اینڈ کاف، جو کہ ایک مخرج سے نہیں آتے بلکہ دو ڈفرینٹ مخارج سے آتے ہیں کیونکہ پیلٹ کا فرق آ جاتا ہے. پھر جو درمیان والا حصہ تھا اس کو ہم نے کہا کہ یہ وسط اللسان ہے، یہاں سے تین لیٹرز آتے ہیں، یا شین اینڈ جیم. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایگزیکٹ ایک پوائنٹ سے نہیں آ رہے. آپ جب ان کو بہت کینلی فیل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ایک پوائنٹ سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ پوری، کیونکہ جو وسط اللسان ہے آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایریا بن رہا ہے نا، تو اس ایریا کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ وسط اللسان کی باؤنڈری کے اندر ہیں، پلس جو پیلٹ کا حصہ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہارڈ پیلٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں لیٹرز ایگزیکٹلی ایک ہی مخرج سے آ رہے ہیں. جس میں سے ہم نے یا کو ڈسکس کیا تھا کہ یا کو پریکٹس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ حرف لین کو بولیں، کیونکہ حرف لین کا مخرج بھی وسط اللسان اور اس کے پیرل پارٹ آف پیلٹ ہے. تو جب آپ لین بولتے ہیں آئی کر کے، تو آپ فیل کریں کہ آپ کا کون سا پارٹ آف ٹنگ اوپر اٹھ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے وسط اللسان کا جو اقصر لسان کی باؤنڈری لائن کے پاس ہے، یعنی وسط اللسان کا تھوڑا پیچھے والا ہے، وسط اللسان ہی مگر تھوڑا پیچھے کی طرف ہے، بہت منہ کی جانب یہ حصہ نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ منہ کی جانب والا حصہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ از یہ آنے لگ جاتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. ای ایا، ای ایا، یا ایوہا، تو یہ بالکل ساؤنڈ جو ہے یا سافٹ ساؤنڈ ہوتی ہے، جس میں آپ کو ساؤنڈ بھی تھوڑی دیر سنائی دیتی ہے. ای یا آپ فیل کریں تو یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے، ساؤنڈ بھی رن کری ہے، آپ کو ساؤنڈ سنائی دیتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کامنلی اسٹوڈینٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں، کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت آگے والا حصہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں زبان کا، جس سے یہ آواز آتی ہے. تو میک شیور کہ ژ کی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے، اس میں ایئر بھی ہے اور اس میں مخرج بھی تھوڑا وسط اللسان کا وہ حصہ استعمال ہونے لگ جاتا ہے جو تھوڑا منہ کی جانب ہے، جو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یا کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے شین. ڈریم کو ہم تھوڑا آخر میں ڈسکس کریں گے، یہ تھوڑا سا زیادہ پریکٹس ڈیمانڈ کرتا ہے. یا کے بعد جو نیکسٹ لیٹر آ گیا وہ ہے شین. شین کے اندر زبان کافی ساری درمیان میں سے، وسط اللسان کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور روف آف ماؤتھ کی طرف جاتا ہے، اور اس سے साउंड आपकी आती है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हिट नहीं होता, यानी जबान जोर से ऊपर रूफ के ऊपर नहीं लगती, बल्कि जैसे या के लिए लग रही होती है आई। आप देखें कि बहुत सॉफ्ट टच आ रहा होता है, बिल्कुल शा के लिए भी यही ऐसा ही सॉफ्ट टच आता है, यानी सॉफ्ट हिट है, बहुत जोर का शदीद हिट नहीं आ रहा। शीन की जो साउंड है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन एरर इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि हम इसको उर्दू में भी बोलते हैं शा, और हम इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं SH साउंड बोलते हैं शी, तो इस वजह से ये जो साउंड है ये मतलब इसके अंदर बहुत कॉमनली हमारे पास मिस्टेक्स नहीं आ रही होती, ये आवाज सही तरीके के साथ बोली जाती है, सिवाय कुछ पाकिस्तान के एरिया के ऐसे लोग हैं जो कि शीन को सही अदा नहीं कर सकते, या आप देखें कि वो बच्चे जिन्हें स्पीच डिसऑर्डर होता है वो शीन को समटाइम्स अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत बचपन से ही शीन की साउंड जो है वो बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, तो उसमें फिर ये है कि उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, वरना नॉर्मल स्टेट के अंदर शीन की साउंड के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने में आता। हाँ बिल्कुल, ये लाइट लेटर है, आप इसको बहुत मुंह में दबाव क्रिएट किए बगैर इसको बोल रहे होते हैं, लाइक अश अश और अशा और अशी और अशु, इस तरह से आप बहुत लाइट करके इसको बोल रहे होते हैं, हल्की साउंड है और सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट हिट आ रहा है इसके अंदर, और जो है यानी ये दरमियान वाला सारा काफी सारा हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है, जैसे वर्ड आता है मीनशन शुरूरी शू, तो मेक श्योर कि ये शू शू हैवी ना हो, यानी शू शुरूरी इस तरह से हम इसको बोलते हैं। ओके सही। शीन के बाद जो नेक्स्ट लेटर हमारे पास आता है दैट इज जीम, हरूफ शद थर्ड लेटर है जो कि जीम है। जीम थोड़ा सा ट्रिकी और डिफरेंट है उस जीम से जो कि हम अपनी आम जबान में इस्तेमाल करते हैं। हम उर्दू में जो जीम इस्तेमाल करते हैं, अरबिक का जीम, और जो इंग्लिश में जा साउंड इस्तेमाल की जाती है, अरबिक के जीम से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, अब मैंने जो आपको वसतुल लिसान का एक हिस्सा कहा था ना कि जब आप दरमियान में लाइंस लगाते हैं तो वसतुल लिसान की एक बाउंड्री लाइन होती है जो अक्सर लिसान और वसत शेयर कर रहे होते हैं, उस बाउंड्री लाइन के करीब से आपका ये आता है, एक वो लाइन है जो अदनल लिसान और वसत लिसान शेयर करते हैं। ठीक है, जब आप ओवल को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक लाइन आपने कहाँ लगाई, वो बॉर्डर लाइन है अदनल लिसान और वसत लिसान में, तो जो डीम है वो इस बॉर्डर लाइन के करीब से आता है, वो बॉर्डर लाइन वसत लिसान की और अदनल लिसान की जो मुंह की जानिब है, तो या के ऑपोजिट हो गया, या थोड़ा ज्यादा पीछे से आता है वसत के और ये वसत के बिल्कुल इनिशियल पार्ट से आता है। अब कॉफ को प्रैक्टिस करते हुए ना हमने थोड़ा सा रूफ ऑफ माउथ को देखा था, आज हम फिर थोड़ा सा रूफ ऑफ माउथ को देखते हैं कि रूफ ऑफ माउथ का कैसा स्ट्रक्चर है। जी, शीन भी मिडिल से आता है, जीम भी मिडिल से आता है, या भी मिडिल से आता है, सिर्फ मिडिल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यानी शीन में काफी ज्यादा मिडल का जो टंग है आप इसको देखें अश, तो ये काफी ज्यादा टंग मिडल से आपकी ऊपर की तरफ जाती है, फिर इसी तरह से जो या है आई उसमें थोड़ा सा बैक पार्ट ऑफ मिडल इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा वो मिडल इस्तेमाल हो रहा है जो कि अक्सर लिसान की बाउंड्री लाइन के करीब है, ड्रीम में वो मिडल इस्तेमाल होता है जो अदनल लिसान की बाउंड्री लाइन के करीब है। ठीक है, तो ड्रीम थोड़ा ऐसे वसत से आता है जो मुंह की जानिब है। ओके, इसमें अगर हम रूफ ऑफ माउथ के थोड़े स्ट्रक्चर को देखें तो मैं चाहूंगी कि आप सब ना अपनी टिप को गम लाइन के ऊपर लगाएं, बिल्कुल जो गम लाइन है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपनी टंग को पीछे की तरफ रोल करें। आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि आपको कैसा स्ट्रक्चर फील हो रहा है ऊपर, रूफ ऑफ माउथ कैसा है, not in terms of hard and soft, but in terms of structure. जी बिल्कुल, बीच में डोमी एरिया सा फील होता है, शुरू में थोड़ा सा स्मूथ एरिया है, स्ट्रेट। अब आप लोग सब इसको लगाएं और फील करें। जी बिल्कुल, टिप जब गम लाइन के साथ लगती है तो अबाउट हाफ एन इंच कह लें, ये एरिया जो है ये थोड़ा स्ट्रेट है। और इस एरिया के बाद आपके पास ना एक केव सा बन जाता है। एलिवेटेड है ये, थोड़ा उभार सा आप कह लें, ये स्ट्रेट एरिया है। और इसके बाद ना ये एलिवेटेड इसलिए फील होता है क्योंकि इसके बाद वो गहराई सी आ जाती है। फिर आप देखें कि आपका जो हाँ जी, फिर आपका जो सेंट्रल पार्ट है वो ये डोम सा बना हुआ होता है। और बिल्कुल एंड में दोबारा से जो आपका पार्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आने लग जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉफ एंड काफ के मखरज में, कि हमने देखा कि बहुत एंड पर सॉफ्ट पैलेट था। हम वहां तक नहीं जाते, बस शुरू का हिस्सा इतना आपको फील होना चाहिए कि स्ट्रेट एरिया है जो थोड़ा आपको एलिवेटेड फील होता है। हालांकि वो एलिवेटेड नहीं है, वो स्ट्रेट है। वो इसलिए एलिवेटेड फील हो रहा है क्योंकि उसके बाद आपके पास डोमी एरिया आ रहा है। ठीक है, आपके पास उसके बाद केव या वो गहराई सी आ रही है, जिसकी वजह से लगता है जैसे शुरू का कुछ हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है। इस गहराई में, जहां से उस पॉइंट से जहां से ये गहराई शुरू होती है ना, ये आपका हार्ट पैलेट है। यानी जिस जिस पॉइंट से आपका डोम स्टार्ट हो रहा है वो जो पार्ट है वो आपका हार्ट पैलेट है। यहां से हार्ट पैलेट शुरू हो रहा है। इससे पहले जो स्ट्रेट एरिया था वो गम एरिया था। ठीक है, हार्ट पैलेट यहां से शुरू होता है और फिर ये काफी लाइक लेंदी पार्ट है जो बहुत एंड तक जाता है, सॉफ्ट पैलेट की बिगिनिंग से पहले तक। ये जो डोम एरिया है ना, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां से हार्ट पैलेट आपका शुरू हो रहा है, बिल्कुल इसके पैरेलल। अब अगर आप ना जैसे वो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बात समझा सकूं। जैसे आप देखें कि आप किसी चीज को ना स्कॉच टेप के साथ जब जोड़ते हैं, किसी भी टेप के साथ जब आप जोड़ते हैं स्टिकी पैड के साथ, तो आप क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा खोल के, अमूमन वो सर्कुलर शेप में आपको मिल रहे होते हैं ना, आप थोड़ा सा उसको खोल के एक एंड के साथ चिपका देते हैं और फिर आप उसको खोलते रहते हैं, जितना आपको जरूरत होता है आप ज्यादा खोलते हैं। आप ना इसी तरह से टंग के साथ करें कि आप टंग की टिप को स्टिक करें ऊपर, बिल्कुल दांतों की गम लाइन के ऊपर, जहां पर आपके जो ऊपर वाले दो दांत है वो जुड़े हुए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसको टेप को स्टिक करते जाते ना, ऐसे आप अपने टिप को नहीं आपने हिलाना, इसको बिल्कुल आपने फिक्स कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा 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 और पार्ट ऐड करते जाएं। बहुत पीछे तक तो आप नहीं जा सकेंगे, लेकिन आप देखें कि आप शुरू का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे। और अब आप फील करें कि आपकी टंग का वो पार्ट जो डोम के साथ, डोम के इनिशियल पार्ट के साथ टच हो रहा है, बिल्कुल डोम के इनिशियल पार्ट, ये वो वसतुल लसान है जो बिल्कुल आप जीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। डोम का इनिशियल पार्ट प्लस वसतुल लसान, ठीक है, ये वो वसत है, ये वो टंग का सेंट्रल पार्ट है जो आप डोम के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सॉरी जो आप जीम के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम वसत की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि शायद बहुत पीछे से आवाज आनी है, जो या का एरिया है या शीन का जो एरिया है वहां से साउंड आ रही होगी, यानी अज्ञ अज्ञ। तो वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जीम इस तरह से होने लग जाता है, ये लाइक गीम गीम, तो वो ऐसे बोलने लग जाते हैं। नहीं, बहुत स्टार्ट वाला मिडल इस्तेमाल करें, ठीक है, डी 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 डा डी डू, ये साउंड आपकी आनी चाहिए, बहुत पीछे से नहीं। ठीक है, अगर आप बहुत पीछे वाला वसत इस्तेमाल करेंगे तो जीम की साउंड दुरुस्त नहीं आएगी। फिर जीम की साउंड को, आपको मखरज समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आई कि कैसे आपने उसको सेंस करना है। अब जीम की साउंड को परफेक्ट करने के लिए एक तो के द पॉइंट वेयर यू हैव टू हिट एंड द वे यू हैव टू हिट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यानी आप अगर पॉइंट तो सही इस्तेमाल करते हैं मगर हिट का तरीका दुरुस्त नहीं है तो भी साउंड आपकी थोड़ी करप्ट हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इस लेटर में हिट करने का सही तरीका क्या है। या और शीन के अंदर आपने देखा कि आपकी साउंड रन करी है ना, आई देखिए साउंड रन करती है। इवन आप जब बोलते हैं या, ये जो साउंड इनिशियल आ रही है इट्स अ रनिंग ऑफ साउंड, ठीक है। शा तो ये देखिए आप श करके आप इनिशिएट कर रहे हैं, ये साउंड रन करी है। जेम में ऐसी साउंड नहीं होती, हर लेटर की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। इस सफात में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे मगर चूंकि जीम की साउंड सिर्फ मखरज के दुरुस्त होने से सही नहीं होती, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं कि ये किस तरह का लेटर है। तो ये तो लेटर हो गए जिसमें आपने साउंड को थोड़ा सा रन किया है, सही। अब जीम की जो साउंड है वो रन नहीं होती, आप उसको यूं नहीं कहते, जैसे उर्दू में बोलते ना जा, तो ये जो रनिंग आ रही है ना इट्स नॉट अलाउड इन जीम, यानी जा करके नहीं, जा। ये ऐसी साउंड होगी जैसे एक बॉल फ्लोर के साथ टच करता है और जस्ट केम बैक, ठीक है। यानी हिट ऑफ अ बॉल, तो आपकी टंग ऊपर रूफ के साथ टच करेगी, गिवन अ डिस्टेंस, देन एज सून एज यू हिट द मखरज यू जस्ट हैव टू क्रिएट द डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ पार्ट्स। टंग आपकी हिट की, आप फौरन उसे जैसे बॉल वापस आती है ना आप ऐसे टंग को वापस लेकर आए। अगर आप टंग को वापस नहीं लेकर आ रहे और आपकी टंग रूफ के साथ बस हल्का सा गैप दे के उसके साथ ही स्टिक हुई हुई है, उसके साथ ही स्टिक हुई हुई है, तो क्या होगा, साउंड आपकी रन करेगी, ये साउंड आएगी। अब बोले जरा, ये साउंड बोले और फील करें, आपकी टंग तो सेपरेट ही नहीं हुई, आपकी टंग स्टिल रूफ ऑफ माउथ के साथ है और हल्का सा गैप देके साउंड रन करिए। नॉट द टिप ऑफ द टंग, इट्स द मिडिल मिडिल पार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपने बिल्कुल उस तरह से करके जो डोम के बिल्कुल पैरेलल पार्ट आ रहा है वो वाला हिस्सा आपने हिट करके उसको डिस्टेंस दें, जा ना जा जा नहीं, अड यानी फॉरन, अड अड यानी हिट करके फॉरन टंग आपकी पार्ट लेती है, पार्टीशन होती है इन दोनों के दरम्यान में, सेपरेशन होती है, एक अच्छी सेपरेशन होती है। अगर आप उस सेपरेशन को क्रिएट नहीं कर पाते तो फिर क्या होती है, टंग आपकी ऊपर ही रुक जाएगी, रूफ के साथ लगी होगी, जैसे आई में हल्का सा गैप देती है, अश में गैप देती है हल्का सा और साउंड रन करती है, अज में भी यही होगा, इसीलिए साउंड आती है रजीम, तो ये जो छ ये साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब डी डी आप देखिए कितनी स्ट्रांग साउंड है, यानी मीना शई वो रजीम छीम नहीं, अब डीम एक हिट की साउंड आ रही है, नो एयर इज कमिंग आउट जी, नहीं साइड्स भी नहीं यूज करेंगे, मिडिल पार्ट ऑफ टंग, जैसे वो मैंने आपको बताया ना, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें ना बार बार, आप फील कर लेंगे उस एरिया को जो मैंने आपको बताया कि आप जैसे टेप को स्टिक करते हैं ना एक एंड से और फिर आप उसको उसको ओपन करते हैं ताकि आप ज्यादा एरिया कोस के साथ यानी अटैच कर सके, तो टिप को बिल्कुल स्टिक कीजिए गम लाइन के साथ और फिर अपनी टंग को ऐड करते जाएं ऊपर रूफ के ऊपर, तो जो पार्ट आपका बिल्कुल डोम जहां से स्टार्ट हो रहा है ना डोम एरिया, जो पार्ट ऑफ टंग उसको टच कर रहा है वही वाला पार्ट ऑफ टंग, अब आप पार्ट ले लें अलग करें उसको, सिर्फ सेंस करें कि कौन सा पार्ट इसको टच कर रहा है, आपने फील करना है कौन सा पार्ट ऑफ टंग जो है वो उस डोमी एरिया को टच कर रहा है, फिर आपने अलग से उस पार्ट को उठाकर स्ट्रांगली हिट करके टेक अ बैक, ठीक है। चाहे कलकला वाला लेटर है यानी जीम साकिन है तब भी कम बैक होगा, अज अज अगर कलकला नहीं है तो भी इतना ही स्ट्रांग कम बैक होता है, जा जा जी डू, नॉट लाइक जा जी छू, आप साउंड में डिफरेंस देखें, जा जी डू अज अजी अडू, एक स्ट्रांग हिट की साउंड आ रही है, ठीक है। बात समझ में आई, ये थोड़ा सा ट्रिकी लेटर है, प्रैक्टिस डिमांड करता है और इसलिए डिमांड करता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। यानी हम इस तरह से बोलने के ड्रीम को यूज टू नहीं होते ना, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है और प्रैक्टिस डिमांड करता है। सो जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट, ठीक है? कॉन्शियसली मखरज को रिकग्नाइज करें, क्योंकि मैंने आपको बाय वेरी फर्स्ट डे बताया था कि आप कपल ऑफ लेटर्स अ वीक सीख रहे हैं, ठीक है? दो तीन लेटर्स सीखेंगे तो वो दो तीन लेटर्स आपकी प्रैक्टिस में पूरा वीक जब रहेंगे तो फिर ही आपके मखारिज के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। स्पेस कहाँ होगा? बिल्कुल, मिडिल पार्ट ऑफ टंग प्लस मिडिल पार्ट ऑफ पैलेट इज जीम। जी, आपका जो मिडिल पार्ट है टंग, जब वो मिडिल पार्ट ऑफ पैलेट से हिट करता है, बिल्कुल इनिशियल पार्ट ऑफ डोम से, डू नॉट से इट मिडिल पार्ट ऑफ पैलेट, मिडिल पार्ट ऑफ टंग प्लस हार्ड पैलेट। ठीक है, क्योंकि शुरू में जो पैलेट का शुरू का हिस्सा आ रहा है ना, हाँ जी, जो शुरू का पैलेट का हिस्सा आ रहा है वो तो आपका गम एरिया है, ठीक है? तो हाँ, जो सॉरी, रूफ ऑफ माउथ का, रूफ ऑफ माउथ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रूफ ऑफ माउथ का जो शुरू का हिस्सा है दैट्स गम, गम एरिया, जो डोम से पहले पहले, डोम जहां से शुरू होता है वहीं से पैलेट शुरू होता है और बिल्कुल इनिशियल पार्ट ऑफ पैलेट पर आप हिट करते हैं, इनिशियल पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट पर। सही, वो जो लिसान का जो शुरू का हिस्सा है ना, अदन लिसान, वो आपका कवर अप हो जाता है उससे, गम एरिया से। यानी चूंकि वो अदन लिसान के पैरेलल क्या आ रहा होता है, गम एरिया आ रहा होता है, तो फिर मिडिल पार्ट ऑफ टंग के पैरेलल क्या आता है, बिल्कुल इनिशियल पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट। नहीं, ड्रीम को अदा करने में नहीं आपने गम लाइन के साथ स्टिक रखनी, ये सिर्फ रिकग्निशन ऑफ मखरज है। आप उस एरिया को रिकग्नाइज कैसे करते हैं? अगर मैं आपको कहती हूँ ना मिडिल पार्ट ऑफ टंग हार्ड पैलेट को टच करें, यू डोंट नो व्हाट इज मिडिल पार्ट ऑफ टंग, यू डोंट नो व्हाट इज हार्ड पैलेट, तो आप उसको टच कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ हम एरिया रिकग्नाइज करें, कौन सा पार्ट ऑफ टंग कौन से पार्ट ऑफ पैलेट को टच करेगा। तो इस वजह से हम गम लाइन के साथ टिप को स्टिक करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल हार्ड पैलेट शुरू होता है तो पैरेलल बिल्कुल जो आपका पार्ट ऑफ टंग टच करता है यही आपका वो मिडिल पार्ट है जिससे आपने ड्रीम को अदा करना है, और यही वो बिल्कुल डोम का जो इनिशियल पार्ट है वही आपका हार्ट पैलेट है जिससे आपने ड्रीम को अदा करना है। ठीक है जी, बिल्कुल, लेटर ड्रीम में इसी तरह से होगा जी, बिल्कुल हिट करेंगे और फिर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। सही, तो ये हमारे थे हरूफ शजरिया, और इसमें आपने, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपने बस कुछ चीजों का ध्यान और रखना है। कॉमन एरर्स में अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एरर ये पाया जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग इट फ्रॉम द हार्ट पैलेट, इसको गम एरिया से बोला जाता है। नहीं, हार्ट पैलेट पे हिट करने के बजाय क्या करते हैं, थोड़ा और आगे हिट कर देते हैं, ऊपर रूफ वाला ना, तो वो साउंड क्यों कैसी आती है, जा, ये साउंड आती है जा अज। जैसे आप जीम बोलते हैं ना, अगर आप ऐसे दोबारा से बोल के थोड़ा सेंस लें तो आप देखें कि आप बिल्कुल कहां पर हिट करें, गम एरिया पर, जो बिल्कुल मुंह गम लाइन के बिल्कुल पास है, जा जा, ये उर्दू का जीम है जो हम बोलते हैं, या जग, इवन जग, तो ये जो साउंड आ रही है ये गम एरिया से आ रही है, तो डू नॉट यूज द गम एरिया, गो फॉर हार्ट पैलेट। ठीक है, जी, मैं कॉमन एरर बता रही थी कि कॉमन एरर जो है इसका क्या है, कि आप जो ड्रीम है उसकी अदायगी गम गम एरिया से हो रही होती है इंस्टेड ऑफ हार्ट पैलेट। तो मेक श्योर कि आप हार्ट पैलेट इस्तेमाल करें, गम एरिया नहीं। जो हम उर्दू में जीम बोलते हैं और जो हम इंग्लिश में जे बोलते हैं वो हार्ट उससे आ रहा होता है, गम एरिया से आ रहा होता है, जा जा, बहुत इनिशियल पार्ट से आ रहा होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा जो इसके अंदर कॉमन एरर है वो स्ट्रांग हिट और कम बैक नहीं हो पाता। बहुत बहुत दफा स्टूडेंट एक अच्छा मखरज हिट कर रहे होते हैं, चीम चीम, लेकिन उसमें साउंड क्या ची की ज्यादा आती है। वो क्यों ऐसे है कि आप हिट करते हैं टंग को सेपरेट करने की बजाय, मखरज से पार्ट लेने की बजाय, वो ऊपर ही कहीं रुक जाती है टंग और हल्की स्पेस देकर साउंड रन करने लग जाती है, इसलिए फिर इसकी साउंड जो है वो दुरुस्त नहीं आती। तो आपने मखरज के साथ साथ इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपने जीम को इम्प्रूव करने के लिए। सही जी, अभी कोई बात समझ नहीं आई इस लेटर में तो पूछ सकते हैं आप। तो हमने टंग के दो एरियाज कवर कर लिए, अकसल लिसान जिससे दो मखारे जाते हैं कॉफ एंड काफ, देन वसतुल लिसान जिससे थ्री लेटर्स आते हैं, वसतुल लिसान के एक मखरज तीन लेटर्स आते हैं जीम शीन एंड या। अब हम आएंगे हाफतुल लिसान पर। बिल्कुल जी, हिट करके आपने स्ट्रॉन्ग हिट करके इस जबान को गैप देना है मखरज से ना, पैलेट से गैप देना है ताकि स्ट्रॉन्ग साउंड आए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मखरज आ गया वो हाफा आ गया। हाफा कहते हैं साइड्स ऑफ द टंग। चलें आप फिर हम आ जाते हैं ओवल शेप के ऊपर। पेंसिल से जो एरिया आपने ड्रॉ किया है ना, ओवल शेप जो आपने बनाई है सारा एरिया, ये सब का सब साइड ऑफ टंग है जी। हा अलिफ, दो जीम हा वाला होता है, हा अलिफ फा इन राउंडर था हाफा। सही, जो पेंसिल से आपने ड्रॉ किया है ना वो सब हाफा है। अब जो एंड वाला पार्ट होता है ना, वो आपको पता है फ्री नहीं है, आप टंग के एंड पार्ट को हिला नहीं सकते, आप टंग के एंड पार्ट को उठा के आगे नहीं ला सकते, ठीक है। आपकी साइड्स जो फ्री हैं वो ही हम लेटर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सी हैं जो राइट साइड के ऊपर है, जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, और जो फ्रंट पर है, ठीक है। जो जबान की साइड्स फ्रंट पर हैं, मैं इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस करी हूं कि जब हम कहते हैं ना साइड्स ऑफ द टंग, तो स्टूडेंट्स पता क्या परसीव करते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, वो ये चीज परसीव करते हैं। तो आपने ये नहीं परसीव करना, जब हम साइड की बात करते हैं तो जैसे एक ब्रेड है, तो आप देखें कि अमूमन जो है वो आपके पास ब्रेड स्क्वायर शेप में होती है, तो उसके जितने भी साइड्स आ रही है ना, जितने भी किनारे हैं वो सब हाफा है। तो जब आप ओवल शेप की बात करते हैं तो ओवल शेप का जो किनारा आपने ड्रॉ किया है वो सब साइड है, वो सब साइड ऑफ द टंग है। कुछ साइड फ्रंट पे आ रही है, किनारा जो है जैसे एक ब्रिम होता है उस तरह से, कुछ आपका फ्रंट पे आ रहा है, कुछ राइट साइड पे आ रहा है, कुछ लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जो बैक है वो अटैच्ड है, वो फ्री नहीं है, राइट। तो आपने हाफा से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड परसीव नहीं करनी, ये पूरे किनारे जो आपने ड्रॉ किए हैं ये सब के सब हाफा हैं, सिर्फ अकसल लिसान का जो हाफा है वो फ्री नहीं है, वो अटैच्ड है, इसलिए फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाफतुल लिसान से, हमारे दो लेटर्स आते हैं, एक है लाम दूसरा है बौद, राइट। अब हाफतुल लिसान के लेटर्स को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा दांतों को भी देखेंगे। दांतों को इसलिए देखेंगे क्योंकि जिस जगह के ऊपर ये टच होते हैं ना वो सब आप देखिए, दांतों की शेप भी इसी तरह से आ रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें आपकी दांतों की शेप क्या है, बिल्कुल जैसे ओवल बनता है ना, बिल्कुल वो चीज बन रही है, जहां से आपकी टंग का अटैच्ड है वहां पे दांती नहीं है, राइट। तो ये आप देखें उल्टा यू बना दे तो ये आपके दांतों की शेप है, और यही फ्री एंड्स किनारे हैं जबान के, ठीक है। तो जहां पर जबान के किनारे लगेंगे या तो वो दांत होंगे या वो दांतों का गम एरिया होगा, इस वजह से हम थोड़ा सा दांतों को भी देखेंगे। ओके, एक माउथ पीस के अंदर कितने टीथ होते हैं? थर्टी 32, सही। 16 अपर फेस पर होते हैं और 16 बॉटम फेस पर होते हैं, ठीक है। अब जो बॉटम फेस के टीथ हैं उनको हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि वो हाफा में यूज नहीं होते, एक्चुअली वो बहुत एक दो लेटर्स हैं जिसमें वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वरना यूजुअली हम नीचे वाले बॉटम टीथ इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर जो हमारा काम होता है वो रूफ ऑफ माउथ और अपर जो टीथ हैं उनसे होता है, ठीक है। तो नाम वही है, प्लेसमेंट वही है, फर्क इतना आ जाता है कि ऊपर वाले टीथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं औलिया, आइन लाम या अलिफ, औलिया, और जो बॉटम टीथ है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुफला। सिर्फ इतना फर्क आ जाता है, वरना दांतों की प्लेसमेंट वही है, हर चीज वही है, सिर्फ ऊपर वाले इंसाइजर्स के लिए, आई मीन ऊपर वाले जो टीथ हैं उनके लिए आप यूज करते हैं औलिया का वर्ड, ठीक है, और नीचे वाले के लिए आप यूज करते हैं सुफला का वर्ड। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं अपर एंड बॉटम टीथ, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सामने के दो दांतों के ऊपर, जो आपके फ्रंटल टू इंसाइजर्स हैं, इनको हम अरबिक में कहते हैं सनाया, ठीक है, सनाया, सा से, सा नून अलिफ या अलिफ, सनाया, और इसका सिंगुलर होता है सनिया। लोग नाम भी रखते हैं, सनिया नाम भी रखते हैं। सो फ्रंटल टू इंसाइजर जो है वो सनाया, सिंगुलर सनिया। जो उसके बिल्कुल साथ, ये फ्रंटल टू इंसाइजर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर, ये जो दो आपके इंसाइजर्स हैं, इनको भी हम इंसाइजर्स ही कहते हैं, इंसाइजर्स यूज फॉर कटिंग। तो ये जो दो इंसाइजर्स हैं बिल्कुल सनिया के साथ, सनाया के साथ, इनको हम कहते हैं रुबाइयात, रा बा अलिफ आइन या अलिफ ता, बिल्कुल फ्रंटल टू इंसाइजर्स के साथ। एक आपका राइट साइड पे दांत होता है, एक आपका लेफ्ट साइड पे दांत होता है, जिसे हम अरबिक में कहते हैं रुबाइयात, और इसका सिंगुलर होता है रुबाइया। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इंसाइजर्स, फ्रंटल और फिर लेटरल इंसाइजर्स, ठीक है। फिर बिल्कुल इसके साथ आपके केनाइन्स होते हैं, शार्प एज वाले जो टीथ होते हैं ना, वो रुबाइया के बिल्कुल राइट साइड पे एक होता है और लेफ्ट साइड पे एक होता है, ठीक है, राइट पे एक होता है, लेफ्ट पे एक होता है, और ये थोड़े शार्प एज वाले होते हैं, बाज लोगों के बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत जो शार्प एज होते हैं ना वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बच्चे इनको ड्रैकोला टीथ भी कहते हैं, यानी थोड़े वो शार्प एज वाले होते हैं ना, तो उनको इस तरह से भी कहा जाता है, केनाइन्स जो होते हैं आपके, इनको हम अरबिक में कहते हैं नाब, नून अलिफ बा। और इसका प्लूरल है अनयाब, अलिफ नून या अलिफ बा, ठीक है, सिंगुलर क्या हो गया नाम एंड प्लूरल इज अनयाब। अच्छा, फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं थोड़े चौड़े दांत, थोड़े से चौड़े होते हैं साइज में, बहुत ज्यादा नहीं, मोलर्स की तरह नहीं। इनको बाज इंग्लिश की किताबों में, जो साइंस की बुक्स होती है उनमें कहा जाता है प्री मोलर्स, प्री मोलर्स कहा जाता है इनको। ये जो है ये नाभ के बिल्कुल राइट साइड पे एक होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है, इन्हें हम अरबिक में कहते हैं बवाहिक, बिल्कुल बौद वाव अलिफ हा काफ, जिसका सिंगुलर है बवाहिक, बौद अलिफ हा काफ, बौहिक, बौहिक सिंगुलर एंड बवाहिक प्लूरल। तो ये जो दांत होते हैं इनको बवाहिक इसीलिए कहते हो, क्या पास हदीस में भी आता है ना, जिसका जिसमें इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, कि जब वो मुस्कुराते थे तो उनके जो बवाहिक हैं, यानी वो इतना खुल के मुस्कुराए कि उनके बवाहिक नजर आने लगे, तो ये वो वाले दांत हैं, ठीक है, जो अक्सर स्माइल करते हुए, अगर आप एक अच्छी स्माइल देते हैं तो उसके ऊपर आपके ये वाले दांत नजर आने लग जाते हैं। तो ये अनियाप के बिल्कुल साथ होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है, थोड़े चौड़े होते हैं, प्री मोलर्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मोलर एरिया शुरू हो जाता है दवाहिक के बाद। दवाहिक भी दो ही होते हैं। अब आप कितने दांत आप पढ़ चुके हैं, दो सनाया, दो रुबाया, दो अनियाप एंड दो दवाहिक, सो 8 आपके दांत हो गए। इसके बाद जो आपके दांत होते हैं वो मोलर्स होते हैं, 3 राइट साइड पे होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे होते हैं, 3 राइट पे होते हैं, 3 लेफ्ट पे होते हैं। इनको हम कहते हैं अत्वाहीन, अत्वाहीन, अलिफ लाम तो वाव अलिफ हा या नून। ठीक है, और सिंगुलर इसका क्या है, अत्वाहीन विदाउट या, अत्वाहीन और अत्वाहीन। सही, ये कितने हैं, 3 राइट साइड पे हैं एंड 3 लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो मोलर्स आपकी कितने हैं, 6 हैं, 3 अत्वाहीन जो है। इसके बाद आपके आ जाते हैं अलिफ लाम एंड स्टार्टिंग ओनली फॉर फॉर मोलर्स। हाँ, इसको ऐसे ही कहते हैं, सनाया, रुबाया, नाब, दवाहिक और फिर अत्वाहीन इन स्पेलिंग। I didn't hear, about the word asanaya, लेकिन अल आप यूज भी कर सकते हैं, उसमें वो जायज नाजायज भी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं सनाया करके ही है, मैंने सुना भी ऐसे ही है, पढ़ा भी ऐसे ही है, और अलिफ लाम तवाहीन के साथ। सही, दैट्स अ ग्रामेटिकल क्वेश्चन। ओके, एनीवेज, इसके बाद आप हमारे आ जाते हैं विजडम टीथ। अब ये आप में से किसी के पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। ठीक है, अब तवाहीन तक जो है वो दांत तकरीबन सबके पास होते हैं। जो विजडम टीथ है उसके निकलने का टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है, और समटाइम्स जो है वो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं तो वो रिमूव करा देते हैं, वो विजडम टीथ नहीं रखते। तो इसमें ये होता है कि ये आपके अपर फेस पर एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, एक राइट पे हो गया, एक लेफ्ट पर हो गया, जिसे हम कहते हैं अनवाजिद, प्लूरल। ठीक है, अनवाजिद, अलिफ लाम नून वाव अलिफ जीम एंड जाल। ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होगा, नाजिद, नवाजिद इज प्लूरल एंड नाजिद इज सिंगुलर। और ये भी कितने होते हैं तादाद में, एक राइट पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है, विद द जाल, जी एंड में जाल है। सही, टोटल 4 होते हैं। अपर फेस पर अगर देखें तो 2 होते हैं, एक राइट पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है। अच्छा, अब आपके दांत पूरे हो गए। ठीक है, 16 अपर फेस के दांत हमने चेक कर लिए, दो सनाया थे, दो रुबाया थे, दो अनियाब थे, दो दवाहिक थे, एंड देन ये 8 हो गए, 6 आपके मोलर्स थे दवाहीन, 14 हो गए, और लास्ट में 2 आपके विजडम टीथ यानी नाजिज थे, जीम एंड जाल, दाल, दाल जो होता है ना वो, ये दो थे। तो टोटल कितने हो गए, 16। सबके साथ उलिया लगा दें, सनायतुल उलिया या सनायल उलिया, रुबायतुल उलिया, अनियाबुल उलिया, بواحك العليا، الطواحين العليا اور النواجذ العليا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر والے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیچے والوں کی بات کر رہے ہیں تو سفلا لگا دیں گے، ثنایت السفلا یا جیسے رباعیات السفلا. لیکن آپ کو میں نے بتایا نا کہ سفلا والے ٹیتھ جو ہیں وہ آپ بہت زیادہ نہیں یوز کرتے، صرف آپ لوگ کو فرنٹل ٹو انسائزرز جو ہیں وہ ایک مخرج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو ہم آگے پڑھیں گے. کوشش کیجئے کہ دانتوں کا یہ سیکوینس اور ان کے یہ نام بھی آپ یاد کر سکیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے حافظے کی جو شارپنیس ہے وہ اس سے بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں مخرج اللام کی طرف، صحیح. حافہ ہم دیکھ رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ حافہ سے دو لیٹرز آتے ہیں، ایک ہے لام اور دوسرا ہے بود. پہلے ہم ڈسکس کریں گے لام کو. لام کا مخرج ہے جب ون تھرڈ سائڈز آف دا ٹنگ، جو فرنٹل سائڈز ہیں وہ آپ کے سامنے کے اوپر والے جو آٹھ دانت ہیں اس کے گم ایریا کو ٹچ کرتی ہیں، تو کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. ون تھرڈ فرنٹل سائڈز آف دا ٹنگ ہٹ گمز آف فرسٹ ایٹ ٹیتھ. فرسٹ ایٹ ٹیتھ میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ ثنایا، رباعیات، ناب اینڈ بواحق. ٹپ اور جو ٹپ کے ساتھ والا ایریا نا وہ بھی سائڈز میں آئے گا. میں نے آپ کو، میں آلریڈی آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر چکی ہوں کہ سائڈ سے رائٹ اور لیفٹ نہ سمجھیں، بلکہ سائڈ سے آپ نے سارا کنارا سمجھنا ہے. تو بالکل جو ٹپ ہے نا وہاں سے آپ اسٹارٹ لیتے ہیں، ون تھرڈ ایریا جو ہے ٹنگ کا وہ آپ کے فرسٹ ایٹ ٹیتھ کو ٹچ کرتے ہیں، پورا ادنا لسان ہو جاتا ہے. ون تھرڈ ایریا یہی ہوتا ہے نا، ٹنگ کو تھری ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، پیچھے والے دو ایریا چھوڑ دیں اور بالکل فرنٹ والا آپ ایک حصہ لے لیں، تو یہ ادنا لسان، آلموسٹ ادنا لسان ہو جاتا ہے، انکلوڈنگ ٹپ. ٹپ از انکلوڈیڈ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سائڈ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، بالکل فرنٹ سے اسٹارٹ ہوگی، جو آپ کا بالکل ٹنگ کا انیشیل پارٹ جو آپ نے ڈرا کیا ہے، اس میں آپ نے ٹپ بھی تو ڈرا کی ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. ٹپ آپ کی ون تھرڈ میں آئے گی، شروع کا جو حصہ ہے، صرف رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ نہیں آپ نے لینی. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹپ آف ٹنگ ہے نا وہ آپ کی کہاں ٹچ کرتی ہے؟ جو بالکل گم لائن ہے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے، ایگزیکٹ گم پر نہ جائیں، گم لائن سے بالکل پوائنٹ آپ پیچھے لے جائیں ٹپ کو، ٹپ آپ کی وہاں پہ جاتی ہے اور پھر یوں ٹنگ ساری اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے اور صرف کنارے لگتے ہیں، مڈل پارٹ نہیں. مڈل ان سینس کے جو آپ کا زبان کا درمیان والا حصہ نا، ساری زبان کو یوں اوپر نہیں لگانا، آپ نے بالکل اوپر جا کے یوں اس کو چپکانا نہیں ہے، بلکہ صرف کنارے لگائیں، ٹھیک ہے، سینٹر سے تھوڑا اس کو ڈوم رکھیں، مطلب اس کو تھوڑا کرو دیں نیچے رہے ہو. خود اس کو اسٹک نہ کریں، اگر کچھ تھوڑا بہت ٹچ ہوتا ہے خود سے تو دیٹس اوکے، لیکن خود انٹینشنلی یہ نہ کریں کہ ساری کی ساری ون تھرڈ ٹنگ آپ کے اوپر روف کو ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. کناروں کو ہٹ کرنے کی زیادہ کوشش کریں. اب یہ ساؤنڈ بہت پھیلی پھیلی ہے، جیسے الحمد الذین وهو العزيز الحكيم، اور یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. آپ پورا جب ایریا یوز کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سارے مخرج کو ہٹ کرنے میں. अगर आप सिर्फ टिप टच करते हैं तो वो आपकी साउंड बहुत अच्छी नहीं आएगी, लाइक अल ये साउंड आएगी, अल अल. सो जस्ट फील द डिफरेंस, अल 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 यू नहीं, ठीक है? बिल्कुल टिप नहीं आपने यूज करनी, उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें और पूरी जो साइड्स हैं 1/3 मखरज की वो आपने इस्तेमाल करनी है. अच्छा, 1/3 एरिया आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक और तरीके से भी कर सकते हैं, गो अप टू द गवाहिक, दांत, जो दांत एरिया जो है ना गवाहिक, वहां तक आप टच, आपका एरिया जबान का टच होना चाहिए. कुछ गवाहिक के कुछ इवन जो कैल्शियम पार्ट ऑफ टूथ है वो भी यूज हो रहा होता है, तो वहां तक आपने टच करना है. अगर आपके गवाहिक स्किप हो रहे हैं, ये बिल्कुल अल बहुत फ्रंट पे टंग है, सिर्फ सनाया यूज हो रहे हैं या रुबाइयात यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो साउंड है वो दुरुस्त नहीं आएगी. सही, थोड़ा फैलाकर तो आपने गवाहिक तक इसको लेकर जाना है. अल. चलिए जी, अब इसके कॉमन एरर्स देखते हैं. समझ आया मखरज आपको लम का? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसके थोड़े कॉमन एरर्स देख लेते हैं. 1/3 समझ आया? यू मीन, अच्छा 1/3 समझ नहीं आया. अच्छा, आप देखिए मैंने आपको कहा था ना एक ओवल शेप ड्रॉ करें ऑलमोस्ट टंग के साइज की, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है? पीछे वाला हिस्सा आपका कसर लसान था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल पार्ट आपका वसतल लसान था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सामने का एक एक हिस्सा रह गया ना, उसके सारे किनारे, उसका जो आपने वो पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ ना पेंसिल वाली लाइन, वो दैट्स 1/3 पार्ट, 1/3 साइज ऑफ द टंग. समझ आया? हाँ, अतिनल लिसान, लेकिन पूरी जबान नहीं, सिर्फ किनारे यूज करेंगे ना, ठीक है? सामने से बिल्कुल किनारे जो है वो इस्तेमाल होंगे. कम एरिया एंड टंग, व्हाट टाइप ऑफ गैप? नहीं, आप हिट करेंगे, टच होगा, गैप नहीं होना चाहिए. अगर आप गैप रखेंगे तो वो साउंड नहीं जाएगी ना, अल अल हिट होगा. सही, चले. नहीं, यू हैव टू यूज बोथ साइड्स फॉर दी लैम. जी, 1/3 फ्रंटल साइड्स ऑफ द टंग, डोंट से पार्ट ऑफ द टंग. पार्ट ऑफ द टंग कहने से वो आपका मानी फर्क हो जाता है. पूरा एरिया, जैसे मैंने आपको कहा ना, जबान को स्टिक करना जरूरी नहीं है, साइड्स लग जाएंगी तो आपकी साउंड ठीक आ जाएगी. जी, कुछ टीचर्स कहते हैं, कुछ इवन किताबों में भी मैंने पढ़ा है कि यू कैन यूज इधर लेफ्ट और राइट साइड फॉर द लैम, बट आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट सो प्रैक्टिकल. इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल. हो सकता है कि इसको बहुत प्रैक्टिस की जाए तो आप इसको यूज करके एक बेहतर लाम बोल सकें, लेकिन बॉर्ड के लिए तो एक अलग चीज आती है कि दैट्स वेरी हार्ड लेटर, तो इस वजह से बाज लोग उसको किसी एक साइड से दुरुस्त बोल लेते हैं. उसको भी हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन लाम के लिए मुझे बहुत हार्ड लगता है किसी एक साइड को टच करना. इट्स रियली 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 डिफिकल्ट. तो नेचुरली आपकी दोनों साइड्स यूं जबान फैल के ऊपर जाना थोड़ा इजी है, और मैंने नहीं सुना कि आप अगर एक साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी साउंड प्रीसाइज आए. याद रखें कि तजवीद में हम जो भी चीज प्रैक्टिस करते हैं ना, हम साउंड की अचीवमेंट के लिए करते हैं. ये सारा कुछ जो हम पढ़े हैं ये असल में उस 100% साउंड को अचीव करने के लिए पढ़े हैं, जो हमें एक ऑथेंटिक चेंज से मिलती है. तो हमारा मकसद वो साउंड है जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाई, जो मैं आपको सिखा रही हूँ. तो मैंने नहीं सुना कि कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि अगर हम राइट साइड लगा रहे हैं तो वो वही साउंड आ रही है जो मैंने अपने उस्तादों से सुनी, तो आई एम नॉट श्योर, मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं करके देखा, लेकिन किसी एक साइड को टच करना इट सीम्स वेरी हार्ड. तो बहरहाल कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है. आई एम नॉट श्योर कि उसका रेफरेंस वो कहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो साइड्स ऑफ द टंग है इसका रेफरेंस हमारे पास इमाम इब्न जज़री से आ रहा होता है ना. हाँ जी, इट्स इजी विद बोथ साइड्स. मेरा ख्याल है 1/3 फ्रंटल पार्ट से ज्यादा आप टच नहीं कर पाते, 1/3 भी टच करना काफी डिफिकल्ट होता है, यानी टाइम टेकिंग होता है. इससे ज्यादा आपका एरिया टच नहीं करता. अगर आपका 1/3 से ज्यादा एरिया टच कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई एरिया यानी जो फ्रंटल पार्ट है वो कहीं स्किप कर रहा है, क्योंकि पोजिशन ऑफ टंग इस तरह से आपकी बनी हुई होती है ना. ये अब हम जब गौर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अगर आप पीछे वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो आगे वाला खुद स्किप होता है. अगर आप आगे वाला हिस्सा हिट करते हैं अच्छी तरह से तो पीछे वाला खुद स्किप हो रहा होता है. यानी वो पोजिशन इस तरह से की है कि आप साइमल्टेनियसली सारे टंग को जो साइज आपने ड्रॉ किया उसको उठा के ऊपर टच नहीं कर पाते. तो थोड़ा सा इस तरह से पोजिशन आपकी बनी हुई है टंग की ना. तो 1/3 ही टच होता है, इससे ज्यादा नहीं टच हो पाता. लेकिन अच्छा अगर आपका 1/3 होगा तो आप उसकी साउंड को अच्छा बोल सकेंगे. ओके ठीक है जी, आ जाते हैं कॉमन एरर्स के ऊपर. लाम के अंदर सबसे पहला तो कॉमन एरर ये है कि इसको टिप ऑफ टंग से बोला जाता है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रंटल 1/3 साइड्स, इसको सिर्फ टिप से बोला जाता है. जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना ला अल, तो वो हम बहुत टिप से बोलते हैं. इससे इसकी साउंड थोड़ी स्प्रेडी नहीं आती, फैली फैली आवाज नहीं आती. अल 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 अल, आप इसके अंदर डिफरेंस फील करें. तो जो फैल की आवाज आती है ना वो आपकी सामने आनी चाहिए, बिल्कुल टिप से आपकी सामने आए, अल अल यू नहीं. फिर दूसरी चीज ये कि जब हम फैला कर जबान को नहीं लगाते ना, जब हम यानी फ्रंटल 1/3 साइड्स नहीं यूज करते तो हमारी जब टंग बहुत फैली हुई नहीं होती तो वो जल्दी साउंड को खत्म करती है, जिससे उसके अंदर बाउंस की सी आवाज आती है. पूरा आप जब नहीं हिट करते ना, जब आप पूरे मखरज को हिट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, पूरा एरिया टच करना और उसको ना ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. तो उससे आपका बाउंस रिड्यूस होता है, जो कलकला की आवाज है लाम के अंदर वो रिड्यूस होती है. जैसे अलहमदु, तो अब जब मैंने पूरे मखरज को टच किया और उसको साउंड दी तो अलहमदु, इसने खुद टाइम लिया. अगर मैं इसको नहीं देती, सिर्फ टिप के ऊपर जल्दी करती हूँ, फिर साउंड कैसे आएगी, अलहमदु अल दो अल जल्दी जाएगी ना, क्योंकि इतने टाइम में आप पूरा एरिया टच नहीं कर पाते. तो वो क्या हो जाएगी, कलकला की सी आवाज हो जाएगी. यही वजह है कि जब हम पढ़ते हैं जैसे वहुवल अजीजुल हकीम, तो अमूमन स्टूडेंट्स की ये साउंड आ रही होती है, वहुवल अजीजुल नहीं, वहुवल, पूरे एरिया को हिट करें. उसे आपने यानी टाइम देना है, उसको हिट करना है, आवाज को मखरज पर खत्म करना है. ठीक है, हिट करके आवाज पहले बंद करें, फिर आ बोले जी जुल, दोबारा हिट करेंगे, सारे एरिया को हिट करें, फिर पहले आवाज खत्म करें एंड देन हकीम, वहुवल अजीजुल हकीम, यू. ठीक है, फर्स्ट कॉमन एरर था कि साउंड टिप से आती है. और सेकंड कॉमन एरर क्या है कि आप जब टिप से उसको बोलते हैं तो इससे एक मिस्टेक पैदा होती है जिसमें लाम के अंदर क्विकनेस है, कलकला है. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. अच्छी तरह हिट करें, साउंड को खत्म करें पहले और फिर नेक्स्ट लेटर के लिए मूव करें. लाइक वहुवल आ, जैसे अगर हम गैप देके बोले तो वहुवल आ, तो लाम की आवाज बिल्कुल पहले खत्म होगी फिर आप आइन बोलते हैं. अगर आप लाम की आवाज नहीं खत्म करते ना तो ये साउंड यू होगी, वहुवल आ, हुवल हुवल आ, नहीं वहुवल अजीजुल हकीम. ठीक है, तो इस तरह से आपकी आवाज होनी चाहिए. फिर एक और मिस्टेक पाई जाती है कि जब हम साउंड को प्रैक्टिस में लेकर आ रहे होते हैं, यानी हम कॉन्शियस एक प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी साइड्स ऑफ द टंग इन्वॉल्व हो, तो उसमें अमूमन ये होने लग जाता है कि बहुत हम एक्सेसिव प्रेशर देते हैं, वो जैसे अल्हम्दु अल बहुत दबाने लग जाते हैं, तो मेक श्योर कि बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें, लाइक लिल्लाही लिल्लाही नहीं अल्हम्दु, एक मीडियम हिट होगा, बहुत एक्सेसिव प्रेशर के साथ नहीं, बहुत ज्यादा आपने लेटर को प्रेस नहीं करना, लेटर को प्रेस करने से स्पॉइल होने लग जाता है लेटर, अल्हम्दुलिल्लाही ठीक है रब्बिल आलमीन, आप हिट करें सब एरिया को, सबके ऊपर प्रेशर जाए, मगर ये प्रेशर एक्सेसिव ना हो, मीडियम आपका हिट जा रहा होगा, ठीक है सही, तो समझ में आया आपको लाम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, जीम और लाम हमारी अपनी, हम इसको इन दोनों लेटर्स को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं मगर डिफरेंटली, ठीक है एग्जैक्टली वो अरबिक वाले नहीं है, सो इंशाल्लाह दोनों ही लेटर्स को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, मखरज को फील करने की, उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करें, फिर जब आप बोल रहे हो तो आप फील करें कि आपकी टंग किस जगह के ऊपर हिट कर रही है, सही, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीक जो है वो बॉज से शुरू करेंगे, हाफत लिसान का जो दूसरा लेटर है वहां से, फिर हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे जी, ओके ठीक है इंशाल्लाह, बारकुम अल्लाहु फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।